थोड़े दिनों के बाद में ठीक 17 तारीख को एक बहुत महान वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस है और वो है श्री माधवेंद्र पुरी, भगवान के अति शुद्ध भक्त महाभागवत। और इनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, इनका गुणगान करना सब भक्तों के लिए बहुत लाभदायक होगा। अभी आज, कल, परसों और हो सकता है कि बुधवार के दिन भी हम माधवेंद्र पुरी के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में कहने लायक, सुनने लायक, और उनके लीलाओं का, उनके चरित्र का, उनके गुणों का अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारे भक्ति के जीवन में बहुत लाभ होगा। माधवेंद्र पुरी वैसे चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि भक्त के रूप में आए हैं हमें सिखलाने के लिए कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। और केवल प्रचार हेतु निमाय पंडित ने संन्यास लिया और उसके बाद वो श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए। वैसे देखा जाए तो भगवान को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे उचित इसलिए समझा कि सारे संसार के लोग सन्यासी को ज्यादा सम्मान देते हैं और अगर लोग उनको सम्मान देंगे ये समझकर कि वो एक सन्यासी हैं और ये भी नहीं जानेंगे कि वो भगवान हैं, फिर भी उनको बहुत लाभ होगा। इस तरह से वो धीरे धीरे सबका उद्धार कर पाएंगे। इस कल्पना से, इस धारणा से उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष की थी। सन्यास लेने के पश्चात वो नवद्वीप छोड़कर भ्रमण के लिए बाहर चले गए। गंगा के पश्चिम भाग में जो प्रांत है उसको राढ़ो देश कहते हैं। पहले राष्ट्र देश कहते थे, राष्ट्र का विकार होकर राढ़ो हो गया तो उसको राढ़ो देश कहते हैं, जहां गंगा नहीं बहती है। तो उस इलाके में 3 दिन भ्रमण किया और फिर नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं बलराम जी हैं, जो उनके साथ में अवतार लिए थे, उन्होंने उनको धोखा देकर, भक्ति भाव में धोखा देकर, यमुना नदी है समझाकर गंगा के ऊपर ले गए और फिर उनको शांतिपुर ले गए, जहां अद्वैत आचार्य रहते थे। वहां चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता वहां उपस्थित थी। सारे नवद्वीप के निवासी वहां एकत्र हुए थे। वहां बहुत ही धूमधाम से धुआंधार कीर्तन हुआ, वहां प्रसाद का सेवन किया सब भक्तों ने, और फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु 4 भक्तों को साथ में लेकर अपने यात्रा में आगे बढ़े। उनके साथ में थे नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित। ये चारों इनके बहुत निकट के पार्षद, जो बहुत शुद्ध भक्त थे, और उनको लेकर वो ओडिशा की ओर चले गए, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी की ओर जाना चाहते थे। क्योंकि उनकी माता शची देवी ने उनसे कहा था कि संन्यास लेना है तो ठीक है, लेकिन मेरे से ज्यादा दूर मत रहना, अगर कहीं वृंदावन या कहीं और जाओगे तो मेरे से बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए तुम नीलाचल में जगन्नाथपुरी में रहना, ताकि नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आना जाना भी आसानी से हो सके। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है बालेश्वर नाम के शहर के पास में, और वहां पे रेमुणा नाम का एक गांव है, और इस गांव में एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है गोपीनाथ मंदिर। तो इस गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु इन चार भक्तों के साथ में गए और गोपीनाथ जी की अति सुंदर मूर्ति का दर्शन करके प्रेमावेश में कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, और सारे भक्तगण उनको उनके साथ में कीर्तन और नृत्य करने लगे। और फिर उन्होंने अपने भक्तों को समझाया कि मैं गोपीनाथ मंदिर के खीर का पान का इसका सेवन करना चाहता हूं, क्योंकि यहां का खीर बहुत प्रसिद्ध है, और इसलिए हम थोड़ी देर रुकेंगे, यहां पर खीर ही पाकर जाएंगे। और उस समय पुजारियों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का अति सुंदर रूप, उनके दिव्य गुण, उनका अगाढ़ प्रेम भगवान के प्रति, इसको देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और नाना प्रकार की सेवा करने लगे चैतन्य महाप्रभु के। और फिर उन्होंने आकर उनको वही खीर भी दिया गोपीनाथ को जो भोग चढ़ाया हुआ था, और उस खीर का सेवन सारे भक्तों ने किया और भाव विभोर हो गए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो मंदिर है बहुत विशेष है, क्योंकि इस मंदिर के जो विग्रह हैं गोपीनाथ जी, इन्होंने हमारे परम गुरु श्री माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी की थी, इसलिए इनको खीर चोरा गोपीनाथ बोलते हैं। अपने भक्त के लिए खीर चोरी करने वाले गोपीनाथ हैं ये। और ये कहानी मैंने मेरे गुरु महाराज श्रीला ईश्वर पुरी से सुनी थी, जो कि उनके शिष्य थे माधवेंद्र पुरी के। तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में ये कहानी सुनाने लगे नित्यानंद प्रभु को और उनके साथ में और जो तीन भक्त आए थे उनको। वो कहने लगे कि कई साल पहले की बात है कि माधवेंद्र पुरी, जो कि महाभागवत थे सन्यासी, अपने भ्रमण के दौरान वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में चलते चलते गोवर्धन में आए, और जब आप जानते हैं कि गोवर्धन पहुंचते हैं तो परिक्रमा करना पड़ता है, तो वहां पर माधवेंद्र पुरी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और फिर वहां एक कुंड था जिसका नाम है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के पास में आए और वहां पे उन्होंने स्नान किया, जलपान किया, और संध्या का समय हो चुका था, एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने बैठ गए। और जैसे ही वो बैठे, थोड़ी ही देर में एक बहुत सुंदर बालक उनके सामने आया, और उस बालक के हाथ में एक कटोरी थी जिसमें दूध था, और उसने आके बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि ये दूध की कटोरी में आपके लिए ले आया हुए है गोस्वामी जी, आप भिक्षा क्यों नहीं मांगते भोजन के लिए जैसे दूसरे भिक्षु मांगते हैं, और आप कौन सा ध्यान आपका चल रहा है। तो माधवेंद्र पुरी ने जब इस बच्चे का दर्शन किया तो तुरंत उनकी भूख प्यास शारीरिक कष्ट सब मिट गया, और वो विस्मित हो गए इस बालक को देखकर और बोलने लगे, तुम कौन हो, कहां रहते हो और क्या करते हो, यहां पर मेरे पास कैसे आए। तो उस बालक ने जवाब दिया कि मैं एक ग्वाल बाल हूं और मैं यहीं के पास के गांव में रहता हूं। हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, जिसको भूख लगती है या तो वो अपने घर में खा लेता है या तो फिर किसी दूसरे के घर में जाके भिक्षा मांग लेता है और फिर वो अपने आप को संतुष्ट कर देता है। हर एक कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो केवल दूध का पान करते हैं, उनके लिए भी गांव में बहुत दूध है, लेकिन जो लोग भिक्षा नहीं मांगते या जो भूखे होते हैं, तो मैं स्वयं उनके पास जाके उनको भोजन देता हूं, दूध देता हूं। वैसे यहां गांव की महिलाएं गोविंद कुंड में आई थी पानी भरने के लिए, तो उन सब ने आपको देखा और समझा कि आप उपवास कर रहे हैं, आपके पास कोई भोजन नहीं है, तो इसलिए वो हमारे पास आए और हमें आदेश दिया कि ले जाओ, वो गोस्वामी जी वहां बैठे हैं, उनके लिए दूध ले जाओ। तो उस बालक ने आगे कहा कि वैसे मेरा नाम गोपाल है। नहीं, उस समय तो नहीं कहा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप ये पी लो दूध और शीघ्र ही मैं लौटकर आ जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा ठीक है। तो दूध जैसे ही पीने लगे, वैसे बालक पीछे पीछे चलता गया और तुरंत अदृश्य हो गया। और माधवेंद्र पुरी ने जब दूध पी लिया तो उन्होंने देखा कि अरे वो बालक कहां गया, अच्छा इधर ही था, अभी कहां चला गया। तो दूध पीकर, दूध इतना स्वादिष्ट था कि माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि ऐसा दूध मैंने कहीं नहीं पिया है, और वो बालक भी इतना सुंदर था कि बालक उनके मन में ऐसे छा गए कि वो उनको भूल ही नहीं पाए, और फिर उनको नींद नहीं आई रात में, इसलिए धीरे धीरे से अपना जप करते रहे, कृष्ण नाम का जप करते रहे, और रात्रि के अंत में उनको हल्की सी नींद आ गई, थक गए थे भ्रमण करते करते, और निद्रा के समय उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में वही बालक फिर से आया और कहने लगा कि मैं बहुत देर से हे माधवेंद्र पुरी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं, तुम मेरे सेवक हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ा, सपने में ही हाथ पकड़ा, और उनको एक जंगल की ओर पास में ले गए जहां बहुत घने झाड़ियां थे। उन झाड़ियों में ले जाकर कहा कि यहां पर मैं छुपा हुआ हूं। बहुत साल पहले जब मुसलमान राजा ने आक्रमण किया यहां पर, तो जो पुजारी मेरी सेवा कर रहे थे, डर के मारे उन्होंने मुझे मंदिर से निकाला और इन झाड़ियों में छुपा डाला और अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग गया, और तब से मैं यहां पड़ा हूं। यहां कांटे मुझे चुभते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी बहुत ठंडी होती है, कभी तेज हवा बहती है, कभी वर्षा आता है तो वर्षा के समय मैं गीला हो जाता हूं। तो इस तरह से मुझे यहां बहुत कष्ट हो रहा है, गांव के लोगों को बुलाओ और मुझे इन झाड़ियों से निकाल दो और मुझे इस पर्वत के ऊपर स्थापना कर दो, और इसके बाद में मेरी अच्छी ढंग से सेवा करो। मेरा नाम गोपाल है, मैंने ही बहुत साल पहले गोवर्धन पर्वत को मेरे बाएं हाथ के छोटे उंगली पर धारण किया था 7 दिन और 7 रात, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए मैं भी यहां प्रकट हुआ हूं। तुम्हारे भक्ति भाव को महसूस करते हुए मैं यहां तुम्हारे पास में आया हूं, तुम्हें मैंने दर्शन दिया था, और इस तरह से स्वप्न टूट गया और माधवेंद्र पुरी नींद से जागे, और जैसे ही जागे तो उनको पता चला कि मैंने जिस बालक का दर्शन किया था वो तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, और हाहाकार करने लगे कि हाय मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं पहचान नहीं पाया, और फिर प्रेमावेश में आकर वो भूमि पर गिर पड़े और वहां पर बहुत फूट फूट के रोने लगे कि प्रभु मेरे सामने आए थे, मुझे खुद दर्शन देकर गए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन थोड़े समय बाद अपने आप को उन्होंने संभाल लिया, कहा कि मैं अकेले में यहां बैठकर रोने से मेरा क्या होगा, गोपाल जी ने मुझे आदेश दिया है और वो आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे दुख सुख को त्याग कर मुझे गोपाल जी का आदेश क्या है उसका पालन करना चाहिए। ये भक्त की भावना होती है। भक्त जो होता है अपने सुविधा असुविधा दुख सुख को न देखते हुए यही देखता है कि श्री कृष्ण की सेवा उत्तम ढंग से कैसे हो। इसलिए भक्त हमेशा, अगर भगवान की सेवा में कोई कठिनाई भी आ जाती है तो उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको कोई बड़ी चीज नहीं मानता है और इसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं करता कि सेवा करते समय मुझे कितनी कठिनाई हो रही है। तो महान भक्तों के जीवनी से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमें कैसे अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि मेरी सुविधा दुख का सोचना नहीं चाहिए। गोपाल जी का आदेश है कि तुरंत में जाके गांव के लोगों को इकट्ठा करूं और उनकी मूर्ति को झाड़ियों से निकाल के ले आऊं। तो तुरंत वो गए सुबह स्नान करके और गांव वालों के पास में गए और कहने लगे कि गोपाल जी का आदेश है, हम सब का उद्धार करने के लिए, हम सब पे कृपा देने के लिए गोपाल जी यहां पर जंगलों में उपस्थित हैं। तो उठाइए आपके सारे शस्त्र, उठाइए झाड़ियों में काट काट कर एक रास्ता बनाएंगे और फिर गोपाल जी को हम गोवर्धन पर स्थापित करवाएंगे। तो इस तरह से सारे लोग हर्ष उल्लास से तैयार हुए, माधवेंद्र पुरी के साथ में निकल पड़े। वास्तव में जंगल बहुत घना था, झाड़ियां बहुत बढ़ चुकी थीं, लेकिन काट काट के सारे ब्रजवासियों ने अच्छा रास्ता बना दिया और थोड़े ही समय बाद उनको झाड़ियों में एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी गोपाल जी की। गोवर्धन धारी लीला की प्रत्यक्ष एक मूर्ति, भगवान ने अपने बाएं हाथ ऊपर करके गोवर्धन को धारण किया हुआ था। तो तुरंत उन्होंने कपड़े लेकर मूर्ति को साफ किया और फिर देखा कि ये मूर्ति इतनी भारी है कि एक आदमी से उठाया नहीं जा सकता। तो गांव के सारे जो बलवान पुरुष थे वो सामने आए, उन्होंने सब मिलकर गोपाल जी को उठाया और फिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले गए और वहां ऊपर लेकर एक बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर गोपाल जी को विराजमान कराया और एक सिंहासन बनाया और पीछे पीछे भी उनको एक आधार के लिए उन्होंने और एक पत्थर डाल दिया। इस तरह से गोपाल जी वहां आए और जैसे ही लोगों को पता चला कि गोपाल जी आए हैं हमारे गांव में, सब जगह खबर फैलने लगी। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि अभी हमें गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, बड़े धूमधाम से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनकी स्थापना करेंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, इनके लिए अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे, भोग चढ़ाएंगे और सुंदर एक उत्सव मनाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों ने सुना कि माधवेंद्र पुरी के निर्देशन में एक महान उत्सव होने वाला है और गोपाल जी पधारे हुए हैं अपने गांव में, तो सारे ब्रजवासी उस गांव के अपने घर में जो भी चावल, आटा, दाल जो भी था सब लेकर आए और इतनी सामग्रियां हो गई कि पर्वत का सारा ऊपर का भाग भर गया, कोई जगह ही नहीं रह गया और सुंदर सुंदर व्यंजन भी तैयार करने लगे। और इसके पहले माधवेंद्र पुरी ने कहा अभी हमें गोपाल जी का अभिषेक करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने तेल से गोपाल जी के दिव्य शरीर का मालिश किया। वास्तव में भगवान के श्री विग्रह जो होते हैं, चाहे वो पत्थर के बने हुए हों, लकड़ी के बने हुए हों, कांच के बने हुए हों, किसी भी वस्तु के क्यों न बने हुए हों, अगर शुद्ध भक्तों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। ये केवल पुतली या प्रतिमा नहीं होती। चैतन्य चरितामृत में साक्षी गोपाल की लीला में एक ब्राह्मण कहते हैं, प्रतिमा नहि तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। वो गोपाल जी की मूर्ति को कहते हैं कि आप केवल प्रतिमा नहीं हैं, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। तो भक्त की भावना यही होती है, वो जानते हैं कि मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, मूर्ति साक्षात भगवान होते हैं, इसलिए प्रेममयी सेवा उनके करते रहते हैं। तो जो नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े श्रृंगार कराते हैं, केवल इस दृश्य से कि ये साक्षात एक व्यक्ति हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में वो उपस्थित हैं, जिस तरह से हम हमारे घर में भी हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे अच्छे अब व्यवस्था करते हैं, भोजन के लिए, कपड़े पहनने के लिए इत्यादि, जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा के लिए भी ऐसे अच्छे से अच्छे व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक शुरू हुआ और वहां सुगंधित तेल से गोपाल जी के शरीर का मालिश हुआ। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किस तरह से स्थापना की जाती है मूर्ति की, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें माधवेंद्र पुरी के गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा से सीखना चाहिए और उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया वो हम अगर गौर से सुनेंगे तो हम भी उसी तरह से हमारे मंदिर में भी आगे चल के एक दिन प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। तो बहुत ही सुगंधित तेल से उन्होंने मालिश किया गोपाल जी के दिव्य शरीर पर और उसको चिकन बना दिया। और उसके बाद में उन्होंने पंचगव्य और पंचामृत से उनको नहलाया। पंचगव्य मतलब गाय से उत्पन्न होने वाले पांच पदार्थ जो कि बहुत शुद्ध माने जाते हैं। गाय को माता माना जाता है, गौ हमारी माता है और इतनी विशेष पशु है गाय कि उनके शरीर से जो भी निकलता है, जो पांच पदार्थ निकलते हैं या जिनका परिवर्तन होकर ये पांच पदार्थ बनते हैं, ये इतने शुद्ध माने जाते हैं कि भगवान के मूर्ति को नहलाया जाता है। और वो कौन से हैं पांच पदार्थ? पहले है दूध, फिर दूध से जो दही बनता है दूसरा, दूध से जो घी बनता है तीसरा, फिर चौथा है गौमूत्र और पांचवा है गोबर। तो गौ ये एकमात्र पशु है जिसके मल मूत्र से हम भगवान को नहलाते हैं। हम जब भगवान की श्री विग्रह की पूजा करते हैं तो अगर हम शौच के लिए जाते हैं तो हमें नहाकर ही अंदर जाना पड़ता है, इतने सख्त नियम होते हैं। लेकिन गोमाता के जो मलमूत्र होते हैं वो मलमूत्र नहीं, साधारण नहीं माने जाते, वो शुद्ध माने जाते हैं। इतने शुद्ध हैं कि भगवान के शरीर को नहलाने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सोचिए कि अगर गोमाता के गोबर और मूत्र का इतना महत्व है, इतने शुद्ध हैं, तो गाय हमारे वैदिक संस्कृति में कितनी महान है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पंचगव्य से अच्छे तरह से उनको नहलाया गया। जैसे हम हर बार अभिषेक होता है तो पंचगव्य से, पंचामृत से हम स्नान कराते हैं। पंचामृत क्या होता है? पंचामृत में भी दूध, दही और घी होता है, लेकिन गोबर और गौमूत्र के बजाय यहां पर शहद और शक्कर का जल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको पंचामृत कहते हैं। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी ने वहां के ब्राह्मणों के हाथों से और खुद भी पंचामृत और पंचगव्य से स्नान कराया भगवान का, और उसके बाद में महास्नान कराया। महास्नान मतलब बहुत सारा जल जिसमें घी मिलाया जाता है और बाल्टी के ऊपर बाल्टी, मटके के ऊपर मटके, बहुत सारे मटके एक के बाद एक, एक के बाद एक भगवान के शिव विग्रह के ऊपर डाले जाते हैं, भगवान को नहलाया जाता है, इसको महास्नान कहते हैं। महास्नान के बाद फिर से और एक सुगंधित तेल से उनको मालिश किया गया, फिर से शरीर चिकन कराया गया, फिर नाना प्रकार के पदार्थ लगाए गए और फिर से सुगंधित जल से उनको स्नान कराया, उनका अभिषेक हुआ। और उसके बाद में पहुंचकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, श्रृंगार कराया, गहने पहनाए और उनकी सेवा के लिए वहां के जो ब्रजवासी थे ब्राह्मणों ने अलग अलग तरह के फूल, पत्र, तुलसी के हार इत्यादि सब वहां वो सामने लाए और लाकर सब गोपाल जी को अर्पण किया और फिर अगरबत्ती और धूप से उनकी सेवा की गई। साथ साथ में वहां इतने सारे व्यंजन बनाए हुए थे, उन सबको भोग चढ़ाया। प्रचुर मात्रा में दूध था, घी, मक्खन और फिर नाना प्रकार की मिठाइयां दूध से बनी हुई और फिर इतना सारा चावल था क्योंकि गांव के सारे घर से चावल आया था और केवल अन्न को बनाने के लिए 10 ब्राह्मण लगे हुए थे उसमें, उस रसोई में। और उन्होंने इतना चावल बनाया कि उसका एक पहाड़ जैसे हो गया, इसलिए इस उत्सव को अन्नकूट कहते हैं। अन्न का एक पर्वत बनाया जाता है और ये उत्सव सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के हाथों से करवाया था 5000 वर्ष पूर्व, जब इंद्रदेव की पूजा उन्होंने रोक दी थी और कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को कहा था कि इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये हमारे पालन पोषण करता है, इसलिए इनकी पूजा करना उचित है। तो ब्रजवासी ने उनकी बात मान ली थी और ठीक इसी तरह का एक बहुत ही सुंदर विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो उसके बाद में पहली बार ऐसे हुआ 450 साल बाद, जब माधवेंद्रपुरी ने उसी तरह का एक अन्नकूट का महोत्सव किया था वहां पर, और बड़े बड़े चावल के पहाड़ बने थे और वहां नाना प्रकार के गेहूं के पदार्थ बने थे और चपाती रोटी बनाने के लिए केवल 5-7 ब्राह्मण वहां थे जो केवल रोटी बना रहे थे दिन भर, और ऐसे कई 5-10 ब्राह्मण थे जो केवल अलग अलग प्रकार के सब्जियां बना रहे थे, कोई गीले सब्जियां, सूखे सब्जियां। इस तरह से इतने सारे व्यंजन थे कि पहाड़ का सारा ऊपर का भाग भर गया, सब जगह भोग 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 लग रहा था, सब जगह खाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन पदार्थ थे पड़े हुए थे। और फिर भोग चढ़ाया गया, गोपाल जी भूखे थे, बहुत सालों से जंगलों में झाड़ियों में पड़े हुए थे इसलिए प्यास बहुत लगी थी, तो उनको पीने के लिए वास्तव में बहुत सुगंधित जल भी दिया था, उनके स्नान के लिए गोविंद कुंड से भी जल लाया था और वही पानी से उनको पिलाया भी गया, और फिर उनको मुंह धोने के लिए, मुख शुद्धि के लिए भी जल था, नाना प्रकार के सामग्री थे। और गोपाल जी ने बहुत ही पेट भरकर ये पूरा भोग ग्रहण कर दिया, लेकिन गोपाल जी की असीम कृपा से हालांकि उन्होंने ये सब भोग को खा लिया फिर भी वैसे का वैसे ही छोड़ भी दिया। ये है बहुत अद्भुत बात, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार तो करते हैं लेकिन साथ साथ वो उनका अवशेष छोड़ भी जाते हैं, और उनके अवशेष को जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर हमें कृष्ण भक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से गोपाल जी ने सब कुछ, जो भी भोग उनके सामने अर्पण किया हुआ था उसका सेवन किया और उनके अवशेष सारा का सारा वो छोड़ दिया। और उस समय माधवेंद्रपुरी पूरी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अभी सबको खिलाओ ये महाप्रसाद, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, गरीब से लेकर अमीर तक सबको खिलाओ। तो सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को खिलाया गया जैसी कि प्रथा थी उस समय, और फिर उनके बाद में सारे दूसरे ब्रजवासीगण बैठे, सब लोगों ने आनंद से प्रसाद का सेवन किया, और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी ने भी थोड़ा कुछ प्रसाद का सेवन किया, और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी ने आरती के पश्चात जब सबने प्रसाद ले लिया था, गोपाल जी के लिए सुंदर खटिया बनाया, खटिया के ऊपर एक तकिया बनाई घास के, वहां पे तो उस समय डनलो पिलो नहीं हुआ करता था, तो सुंदर बगीचे से उन्होंने घास वास का एक तकिया बना दिया और गोपाल जी को वहां विश्राम के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी, और फिर सभी लोग विश्राम करने चले गए। जैसे ही खबर फैल गई थी कि गोपाल जी विराजमान हुए हैं गोवर्धन के ऊपर, तो उस अन्नकूट महोत्सव में आसपास के गांव के लोग भी आए थे, तो माधवेंद्रपुरी ने कहा सबको खिलाओ, केवल इस गांव के लोगों को नहीं लेकिन दूसरे गांव के लोग जो आए हैं उनको भी खिलाओ, पेट भर के सभी को खाना चाहिए। जो दो दूसरे गांव के जो लोग आए थे वो भी माधवेंद्रपुरी के पास आए और कहने लगे कि गोस्वामी जी कृपा करके हमें भी एक मौका दीजिए कि हमारी ओर से भी गोपाल जी के लिए एक अन्नकूट महोत्सव हो। तो दूसरे गांव से कोई आया, वो भी कहने लगे हमारे गांव की ओर से भी एक अन्नकूट महोत्सव हो। इस तरह से जो भी आसपास के गांव थे वहां के प्रतिनिधि गांववासी आते थे माधवेंद्रपुरी से, ऐसे ही निवेदन करते। इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने उनके लिए एक एक दिन दे दिया कि ठीक है आपके लिए सोमवार, आपके लिए मंगलवार, आपके लिए बुधवार, और इस तरह से हर एक दिन यही अन्नकूट का महोत्सव चलता रहा कई दिनों तक। क्योंकि जब आसपास के गांवों की ओर से अन्नकूट महोत्सव समाप्त हो चुका था तो आसपास के प्रांतों से भी लोग आने लगे, क्योंकि बात बहुत जल्दी फैल गई थी कि गोपाल जी आए हैं और विराजमान है, सबको कृपा देने के लिए आए हुए हैं। तो आजू बाजू के प्रांतों से भी लोग आने लगे, उन्होंने भी कहा हमारी ओर से एक अन्नकूट महोत्सव होना चाहिए, और माधवेंद्रपुरी ने किसी को भी इनकार नहीं किया। इस तरह से कई लंबे समय तक हर दिन अन्नकूट का महोत्सव चलते रहा, और हर एक अन्नकूट महोत्सव में उतने ही शानदार ढंग से धूमधाम से ऐश्वर्यवान पूजा की गई गोपाल जी की, जैसे कि पहले दिन हुआ था। तो देखिए माधवेंद्रपुरी का उत्साह कितना था भगवान की सेवा करने के लिए। हर दिन वो उपवास रखते थे, जब भी अन्नकूट का महोत्सव होता था, जब तक कि अन्नकूट का महोत्सव समाप्त नहीं हो जाता था और जब तक दूसरे सारे ब्रजवासी गण प्रसाद का सेवन नहीं कर लेते तब तक वो उपवास रखते, और अंत में थोड़ा सा कुछ दूध का पदार्थ का सेवन कर लेते और फिर विश्राम कर लेते। हम जब एक दिन कोई महोत्सव करते हैं मंदिर में तो सबको कितना परिश्रम करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन हम इतने थक जाते हैं, फिर सब माला थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, ज्यादा खाना पीना इधर उधर हो जाता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी का उत्साह देखिए, एक दिन अन्नकूट नहीं हुआ, लगातार कई दिनों तक ऐसे चलता गया लंबे समय तक, और हर एक गांव के लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया पूरी तरह से, उनको हृदय से जी भर के उनको सेवा करने का मौका दिया, और हर जगह से हर एक गांव से लोगों ने अपने घर में से नाना प्रकार के पदार्थ दिए, चावल गेहूं सब्जियां अन्न जो भी कुछ था सब देने लगे, और जो भी अमीर आदमी थे सब आके कुछ न कुछ दान देने लगे। कोई किसी ने आकर भगवान के लिए कपड़ा दिया, किसी ने आकर श्रृंगार सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, किसी ने हीरे मोती दिए, किसी ने आकर ऐसे ही पैसे दान दिए, किसी ने कहा कि मैं भगवान के लिए एक मंदिर बनाऊंगा, तो और थोड़े लोग भी आए और फिर मंदिर बन गया भगवान गोपाल जी के लिए। और हर एक गांव के हर एक घर से एक एक गाय का दान हुआ। उस जमाने में हर एक घर में गाय हुआ करते, जैसे आजकल हर एक घर में टेलीविजन होता है, लेकिन उस तरह से जो पूजनीय हमारे पैसे, जैसे गाय पूजनीय हर एक घर में होती थी, आजकल टेलीविजन पूजनीय हमारे घर में हो गए हैं। तो हर एक घर से एक एक गाय दान में आए गोपाल जी की सेवा के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने गाय हुए होंगे गोपाल जी के गौशाला में। आखिर नाम तो उनका गोपाल है, गायों का पालन करना तो उनका काम है, तो इसलिए हजारों हजारों की संख्या में उनकी गौशाला की संख्या हो गई कि इतनी बड़ी हो गई गौशाला, और इस तरह से कोई कमी नहीं रही गोपाल जी की सेवा के लिए धन। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे, अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण हृदय से करेंगे, भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, सभी भक्तों को प्रेम से उनकी सेवा करेंगे, तो खुद ब खुद भगवान की सेवा के लिए कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जहां श्री कृष्ण हैं वहां लक्ष्मीदेव देवी तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण हैं, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी देवी तो आएंगी ही। तो जो भक्त होते हैं ज्यादा लक्ष्मी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हां प्रयास तो चलता है लेकिन चिंता नहीं होती है। क्यों? वो जानते हैं कि हम अच्छी तरह से शुद्ध रहे, भगवान की सेवा करते रहे, तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को, भगवान के दरबार में धन की कमी नहीं है। भगवान केवल इतना देखते हैं कि मेरा भक्त इस धन को संभालने के लिए अभी तैयार हुआ है कि नहीं। अगर भगवान देखते हैं कि यहाँ ये भक्त लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो भी भगवान थोड़ा कुछ रोक लेते हैं। जिस तरह से कि एक छोटा बच्चा होता है, लड़का होता है, जब वो छोटा होता है तो पिताजी ज्यादा, माता पिता हाथ में ज्यादा पैसे नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया। आजकल तो जमाना बदल रहा है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था। धीरे 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 से जैसे लड़का बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं। फिर जब बड़ा हो जाता है तो फिर सारा कारोबार उसको संभालने दे देते हैं, घर की तिजोरी भी उसके हाथ में कर देते हैं, अभी तुम संभालो। क्योंकि जब वो देखते हैं कि बच्चा अभी बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अभी सब कुछ संभाल सकता है, घर का देखभाल कर सकता है, तो धन खुद ब खुद अपनी मर्जी से माता पिता दे देते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान भी देखते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करने में परिपक्व हो जाते हैं और वो जानते हैं कि हम अच्छी तरह से इस धन का उपयोग करेंगे उनकी सेवा में, तो फिर वो दे देते हैं। लेकिन धीरे 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 से देते हैं। इस तरह से भक्त को, चाहे अपने निजी जीवन में या एक भक्त समाज के जीवन में, निराश नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। भक्तों को क्या चाहिए? केवल हमें सेवा करते रहना है भगवान की, जिस तरह से माधवेंद्र पुरी ने किया। और भगवान सब भेज से गए, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अनन्या चिंतयंतो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बताते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन मनन करते हैं, मेरी उपासना और सेवा करते रहते हैं, जो भी उनकी कमियां हैं मैं पूरा कर देता हूं, और जो भी उनके पास है उनका संरक्षण मैं करता हूं। इसलिए भक्त किसी भी चीज, आर्थिक चीज के बारे में चिंता नहीं करता है, हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है। तो माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की सेवा बड़े धूमधाम से मनाई और इस तरह से बहुत लंबे समय तक ये सेवा चलती गई। और जो भी ब्राह्मण वहां थे, माधवेंद्र पुरी ने उनको वैष्णव दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद में ही उनको श्री विग्रह के सेवा में लगाया। तो देखिए, हालांकि ये सब ब्राह्मण थे और 500 वर्ष पहले ब्राह्मण तो आज के हिसाब से तो काफी शुद्ध हुआ करते थे। ब्राह्मण कुल में जो आजकल जन्म लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध होंगे। आजकल ब्राह्मण घरों में भी हम देखते हैं कि मांसाहार होता है, बहुत सारे पाप होते हैं। 500 वर्ष पूर्व इसकी मात्रा कम थी, ब्राह्मण अधिक मात्रा में शुद्ध हुआ करते थे। लेकिन फिर भी माधवेंद्र पुरी ने उनको सीधा भगवान श्री गोपाल जी की सेवा में सेवा करने के लिए अनुमति नहीं दी। पहले उनको वैष्णव दीक्षा दिलाया और फिर उनको सेवा करने के लिए अनुमति दे दी। इससे हम जान सकते हैं कि वैष्णव दीक्षा से कोई भी व्यक्ति अगर हृदय से भगवान की सेवा करना चाहता है तो वो योग्य बन सकता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन पापी है, या अगर भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर उसे भगवान की सेवा करने का अधिकार नहीं होता है। भगवान की सेवा करने का अधिकार केवल भगवान के भक्तों को होता है। इस तरह से माधवेंद्र पुरी ने ब्रजवासी जो ब्राह्मण थे उनको तो दीक्षा दी ही, साथ साथ बंगाल से भी 2 ब्राह्मण आए थे सन्यासी, उन 2 ब्राह्मण सन्यासियों को भी माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा दिलाई और दीक्षा दिलाकर उनको आदेश दिया कि आप सब यहां ठहरो और सुबह शाम दिन रात गोपाल जी की सेवा करते रहो। और उन्होंने अच्छी तरह से उनकी सेवा के लिए कार्यक्रम बनाया, कितने सुबह कितने बजे भगवान के श्री विग्रह को जगाना है, कितने बजे उनको कितने तरह के भोग चढ़ाने हैं। दिन में 6 बार जो हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा है, इस परंपरा में जो अर्चा विग्रह की पूजा होती है कम से कम दिन में 6 बार भगवान को भोग चढ़ता है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां। इसलिए कम से कम 6 दीक्षित अर्थात ब्राह्मण दीक्षित वैष्णव दीक्षित भक्तों की आवश्यकता है जो पूरा समय भगवान की सेवा में लगे रहे। अगर इतनी संख्या में वैष्णव भक्त हैं तो ही प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने योग्य ब्राह्मणों को चुनकर उनको वैष्णव दीक्षा दिलाया और फिर उनको भगवान की सेवा में लगाया। और यही मूर्ति शोक गोपाल जी की मूर्ति आज राजस्थान में उदयपुर के पास में नाथ द्वारा में है, गोपाल जी का मंदिर जिनको श्रीनाथ जी भी कहते हैं। ये मूर्ति वास्तव में इसकी स्थापना की थी वज्रनाभ ने। वज्रनाभ ये भगवान श्री कृष्ण के पोते के लड़के थे और उन्होंने पहले गोपाल जी की स्थापना की थी वृंदावन में, लेकिन जब मुसलमान राजा ने आक्रमण किया तो उस पुजारी ने गोपाल जी को छुपा दिया था झाड़ियों में। तो इस तरह से वज्रनाभ के समय से आज तक कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन सेवा समाप्त नहीं हुई। आज भी जो सेवा चालू है नाथ द्वारा में वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय अर्थात विष्णु स्वामी संप्रदाय वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो भक्त हैं वो करते हैं। बड़े प्रेम से वहां भी सेवा होती है गोपाल जी की, वहां भी बहुत स्वादिष्ट प्रसाद भोग चढ़ता है उनके लिए, और थोड़े पैसे देकर ये प्रसाद भी हम ले आ सकते हैं। आप में से कोई अगर नाथ द्वारा जाएंगे तो यहाँ सब भक्तों के लिए साथ में प्रसाद लेकर आप आ सकते हैं। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की सेवा बहुत धूमधाम से की। इस तरह से माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध भक्त थे कि गोपाल केवल उनकी सेवा करने उनकी सेवा स्वीकारने के लिए वहां प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने गुणगान किया माधवेंद्र पुरी का कि देखो केवल माधवेंद्र पुरी की सेवा स्वीकार करने के लिए वो आए और आकर सारे जगत का उद्धार कर लिया। देखिए कितने लाखों लाखों लोगों की संख्या में लोग आए, उनकी सेवा किया उन्होंने, और आज भी लाखों की संख्या में लोग नाथ द्वारा जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से गोपाल जी बड़े कृपालु हैं और माधवेंद्र पुरी की कृपा से आज गोपाल जी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनका गुणगान किया। और कल सुबह हम चर्चा करेंगे कि आगे चल के गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरी को क्या आदेश दिया और आदेश के पश्चात माधवेंद्र पुरी ने क्या किया, क्या घटनाएं हुई, क्या लीलाएं हुई, और ये सब चीजें हम कल सुबह और परसों सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील माधवेंद्र पुरी गोस्वामी पाद की जय। कोई प्रश्न?
नाथ द्वारा कैसे पहुंची?
फिर भी वही बात थी कि वहां भी कोई आक्रमण हुआ था तो उस समय भी विग्रह को वहां ले गए राजपूत, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनके संरक्षण में। वृंदावन के सारे जो मूर्तियां हैं वो राजस्थानी राजपूत जो राजा थे वो वैष्णव थे, उनके संरक्षण के में सब रखे गए थे, जैसे मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, सारे जो भी प्रमुख मूर्तियां हैं वृंदावन के, ये मूल मूर्तियां आज सब वृंदावन में राजस्थान में है। जैसे जयपुर में राधा गोविंद है, करौली में राधा मदन मोहन है, जयपुर में ही राधा विनोद है, राधा गोपीनाथ है, और गोपाल जी नाथ द्वारा में है। तो जयपुर में अब जाएंगे तो सारे मूल मूर्तियां वहां पर हैं। औरंगजेब ने भी आक्रमण किया था वहां, क्योंकि औरंगजेब तो उनके बाद में आए।
शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो भिक्षा मांगनी चाहिए, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि भिक्षा मांगना चाहिए?
हाँ, भिक्षा मांगना अच्छा है, क्योंकि इससे हम नम्र बनते हैं और न ही हम किसी भी एक जगह से आसक्त हो जाते हैं। इसलिए भिक्षा का जो भिक्षा की पद्धति है वो यतियों के लिए बताई गई है। तो आजकल भिक्षा लेने का मतलब यही मूल चीज है, और जब जरूरत पड़े हाथ सामने लेकर भी जाना पड़ता है लोगों के सामने कि हम कृष्ण की सेवा के लिए आपसे थोड़ा मदद चाहते हैं। इसलिए सन्यासी को त्रिदंडी वैष्णव, सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहते हैं, जो भी नाम है उनका, त्रिदंडी भिक्षु महाराज, फलाना फलाना महाराज भिक्षु, सबसे पहले वो है भिक्षु। ठीक है।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna.